तो आपके कहने का मतलब ये है कि ईश्वर का प्रेम से स्मरण कैसे करें?
कैसे करें?
स्मरण तो करते हैं लेकिन प्रेम से नहीं होता।
करेंगे बहुत कोशिश करके तो 10 मिनट, खासतौर से जोर लगा तो सर में दर्द होने लगता है। जोर लगा करते हैं ना तो ही कोशिश हो जाती है।
देखो सबसे पहली चीज जो ये है, जिस चीज की हम अपने जीवन में ज्यादा आवश्यकता महसूस करते हैं उसकी ऑटोमेटिकली हमको याद बनी रहती है। या यूं भी कह सकते हैं उसकी बड़े प्रेम से याद आती ही रहती है। जिस चीज की आप ज्यादा आवश्यकता महसूस करते हो, मान लिया बेटा कहीं दूर पढ़ने गया है, माँ को उसकी दूरी खलती है मन के अंदर, तो पास था तो बड़े अच्छे दिन थे, अब दूर हो गया तो उसकी याद आती रहती है। तो जब बेटे की आवश्यकता महसूस होती है तो उसकी याद प्रेम से आपको आती ही रहती है। यही बात ईश्वर के बारे में भी है। जब आप ईश्वर की आवश्यकता महसूस करने लगते हो तब बार बार उसकी याद आपको आती ही रहती है। और जब मौन होकर केवल उसकी याद करने बैठते हो तब बड़े प्रेम से उसकी याद आती है। हमारी स्थिति यह है कि आवश्यकता तो हम संसारी वस्तुओं की, संसारी व्यक्तियों की महसूस करते हैं। ईश्वर के बारे में मात्र हमने सुन रखा है, बुद्धि में निश्चय कोई नहीं उसके बारे में। गुरु ने कहा है याद करनी चाहिए इसलिए याद करते हैं, हमको अंदर से आवश्यकता महसूस नहीं होती इसकी। तो जब उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, जिंदगी में उसके कारण कोई कमी महसूस नहीं होती, तो इसलिए उसकी प्रेम से याद आती भी नहीं है। इसलिए जितना भी अध्यात्म विद्या है जो सब पुरुषों के वचनों के आधार पर या उनके शास्त्रों के आधार पर आपको सत्संग के माध्यम से सिखाई जाती है या आप अपने स्वाध्याय के माध्यम से सीखते हैं, उसको पढ़ने का, सुनने का, समझने का एक ही उद्देश्य है कि जीवन में ईश्वर की आवश्यकता मुझको महसूस हो। जिस प्रकार सत्पुरुष कहते हैं कि बिना ईश्वर भक्ति के ये मानव जीवन निरर्थक है, तो ये बात वास्तव में मेरी समझ में आ जाए क्यों निरर्थक है। यदि आपको ये अंदर से प्रतीत होने लगे कि ईश्वर भक्ति के बिना ये जीवन वास्तव में निरर्थक है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप ईश्वर के प्रेम से याद ना करो। कहने मात्र के लिए तो हम कह देते हैं कि मुझे ईश्वर चाहिए, बड़ी ईश्वर की आवश्यकता है, लेकिन अंदर की ये स्थिति वास्तव में होती नहीं है। इसीलिए मन हमारा डामाडोल लेता है। तो बार बार जब हम सत्पुरुषों का जीवन चरित्र जो है या जीवन लीला जो है उनको सुनते हैं, उनको बार बार पढ़ते हैं और बार बार उनके वचनों का स्वाध्याय करते हैं, तो संसार के बारे में जो हमारा निर्णय बना हुआ है वो निर्णय धीरे धीरे हमारा बदलने लगता है। बदलता इसी रूप में है कि यह संसार परेशानियों से भरा हुआ है, यह हमको हर पल नजर आने लगता है। हर वक्त नजर आने लगता है ये संसार परेशानियों से भरा हुआ है। संसार के सुखों को देखकर मेरे मन में ये भ्रम नहीं आता कि संसार सुखरूप है। जितना पुरुषार्थ कर लूंगा उतने सुख इकट्ठे कर लूंगा और मेरा मेरे बच्चों का जीवन सुखी हो जाएगा। ये जो धारणा हमने मन में बना रखी है ये भ्रम है, बहुत गहरा भ्रम है। तो अब बताइए कि बिना विचार के ये भ्रम टूटेगा आपका? और जब तक ये भ्रम टूटेगा नहीं आपका, प्रारंभ में तो वैचारिक दृष्टि से ही टूटेगा, तो आपको ईश्वर की याद प्रेम से कैसे आ सकती है? संसार की ही प्रेम से याद आएगी आपको, उसी में उलझे रहोगे, उसी में पुरुषार्थ करते रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे, सो भी जाओगे तब सपने में भी उसी के बारे में चिंतन चलता रहेगा आपका। ये आपकी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो मन में चलती रहती है। तो इसीलिए जब तक आप एक सिस्टम से ये नहीं समझोगे कि मैं कौन हूं, देह की रचना क्यों होती है, ये मन क्या है, इंद्रियां भोगों की तरफ क्यों दौड़ती हैं, ईश्वर का मेरे जीवन में क्या रोल है, ईश्वर है भी या नहीं है, यदि है तो कैसा है, क्या मेरा उससे कोई संबंध बन सकता है। सत्पुरुष जो संसार में आए हैं उनकी जेब में तो दो पैसे नहीं होते, सुख की तरफ वो देखते ही नहीं, इंद्रिय भोगों की तरफ वो देखते ही नहीं, प्राप्त भी होते हैं तो उनको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, निर्भीक रहते हैं और ईश्वर की याद में इतने मस्त रहते हैं, इस प्रिय देह को ही भूल जाते हैं। तो ये सारी बातें जब आप विचार करते हो, हमारी आदत सुनने की है, विचार करने की नहीं, सुनने से किसी निर्णय पे मनुष्य नहीं पहुंच सकता, निर्णय पर जब पहुंचेगा तो विचार करने से पहुंचेगा। इसलिए केवल दूसरे के विचार को सुन लेना या 50 साल भी सुनते रहो, आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंचोगे, आपकी चलने की जो तरीका है वो वैसे ही रहेगा जैसा बना हुआ है। हो सकता है किसी भय के कारण, किसी सजा के डर से आप गलतियां करना कम कर दो, पाप करना कम कर दो, लेकिन अंदर की जो वृत्ति है वो नहीं बदलेगी आप। ये तभी बदलेगी जब वास्तव में आप जीवन में ईश्वर के महत्व को समझोगे। क्या गलती कर रहा हूं संसार में रहते हुए मैं, उन गलतियों को समझोगे। और ये सारी बातें यदि कोई आपको समझा सकता है तो केवल सत्पुरुष है जो ईश्वर में स्थित है, या यूं कह लें कि वो खुद ईश्वर रूप है। उसका निर्णय और उसका जीवन ही आपको समझा सकता है। तो इसीलिए इस मार्ग पर चलने के लिए पहली जो मूलभूत आवश्यकता है वो गुरु श्रद्धा है, गुरु परायणता है। अभी तो हम गुरु के महत्व को ही नहीं समझते, इसीलिए गुरु की छोटी छोटी बातों के भी हम अवज्ञा बड़े आराम से कर देते हैं। तो गुरु पर विश्वास भी वही करेगा जिसको संसार में कुछ बेचैनी नजर आ रही है, संसार में कुछ दुख नजर आ रहा है और वो सोच रहा है संसार में मुझे बेचैनी के अलावा मिलना कुछ नहीं है, गुरु पर विश्वास भी वही करेगा। तो हम लोगों को गुरु का मार्गदर्शन मिला हुआ है, कैंप करने को भी मिला है, हम में से काफी लोगों को कैंप करने को मिला है, सारी जो आध्यात्मिक तालीम है वो सब्जेक्ट वाइज सुनने का समझने का मौका मिला है, लेकिन उस मौके को हमने आगे चलकर कितना यूज किया है, कितना उसको एनकैश किया है, तो हम पर निर्भर करता है। हमने किताबें उठा के रख दी, सिमरन करने की जरूरत ही नहीं समझी, सत्संग के प्रति भी लापरवाह रहे, इस मार्ग पे चलने वालों से संबंधी हमारा कोई नहीं रहा, तो फिर तो दुनिया की बाढ़ में बही जाएंगे हम लोग, बचे आगे। और यही हमारे साथ हो रहा है, हम दुनिया की बाढ़ में बहते चले जा रहे हैं। ऐसी बाढ़ है जहां ना नाव हाथ में है ना पतवार हाथ में, कब डूबेंगे पता ही नहीं। तो जब तक आप अपने जीवन की तकलीफ को ही नहीं समझते, तब तक ईश्वर की आवश्यकता आप क्यों महसूस करने लगे। सत्पुरुषों को कोई वहम नहीं है, उन्होंने तो निर्णय कर दिया है, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। यदि सुख की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मंगत सुखिया शोभया जिस शोभा पाई करता। जिसने ईश्वर के रहस्य को समझा, ईश्वर की शक्ति को इस देह के अंदर अनुभव किया, गुरु की आज्ञा पालन करके, वो जानते हैं कि संसारी चेतन के मुकाबले में ईश्वर की याद में कितना सुख है, वो प्रैक्टिकली जानते हैं। इसलिए जिनका मन अंदर रम जाता है, ऐसे लोग भी होते हैं ना, भक्त लोग होते हैं जिनका मन अंदर ईश्वर के प्रेम में रम जाता है, वो संसार की तरफ देखना भी नहीं चाहते, उनकी हालत ये होती है। जैसे किसी बच्चे को कड़वे नीम की घूंट पिला दी जाए तो कैसा बुरा लगता है, अंदर से उनकी स्थिति ये होती है कि संसार के प्रति उनके मन में पूर्ण वैराग्य आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है संसार छोड़ देते हैं, संसार तो तभी छूटेगा जब देह छूटेगी आपकी, जब तक देह है संसार भी। तो इसीलिए प्रेम कैसे पैदा हो, ये कोई टेक्निक नहीं है इसकी, प्रेम पैदा करने की कोई टेक्निक नहीं होती। जब तक आपकी बुद्धि में विवेक नहीं आएगा, संसार के भोगों के प्रति वैराग्य भाव आपके मन में पैदा नहीं होगा। मान लिया मुझे चीनी बड़ी अच्छी लगती है, मिठाई बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसका प्रभाव मेरे शरीर पे क्या पड़ रहा है कि मुझको शुगर की बीमारी हो गई। चीनी अच्छी लगती है, मिठाई मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन इस मिठाई से ज्यादा मुझे अपना शरीर पसंद है, शरीर मेरा ज्यादा कीमती है मिठाई के मुकाबले में, तब मुझको भय लगता है यदि मैंने मिठाई खाई मेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप तप शुरू करते हो। किस रूप में? चार बार मिठाई खाते थे, कहते भैया एक बार से काम चलाऊंगा, और छोड़नी मैंने एक बार भी है, इसके लिए मैं आगे प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला तप कहां से शुरू होता है? आपका इंद्रियों का तप शुरू होता है। तो इस तप का प्रभाव क्या होता है? इस तप का प्रभाव यह होता है कि आपकी आपके मन के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर तपोबल इकट्ठा हो जाता है इंद्रिय संयम के रूप में। और जब इंद्रिय संयम में आप सफल हो जाते हो तो क्या लाभ मिलता है आपको? कि आपका शरीर जो बिगड़ने वाला था शुगर के कारण, उसकी रक्षा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब आप ईश्वर का महत्व समझते हो, संसार की डिजायर्स, संसार की वासना, ये कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है, कैसे जनता की जिंदगी बर्बाद कर रही है, कैसे दुनिया की जिंदगी बर्बाद कर रही है, ये जब आपको ये बात सत्पुरुषों के वचन पढ़कर सुनकर जब उन पर मनन करते हो, तब आपकी बुद्धि इस निर्णय पर पहुंच जाती है कि भोगवादी जीवन मानव जन्म के लिए जहर है, जिसकी ओर हम सब जाने अनजाने दौड़ रहे हैं। मनुष्य जन्म के लिए भोगवादी जीवन जहर है। तो ये जहर कहां घोलता है? ये जहर मन में घोलता है। मन के अंदर खाने पीने की इच्छाएं, पहनने की इच्छाएं, घूमने फिरने की इच्छाएं, एक दूसरे से मिलने की इच्छाएं, तरह तरह के दृश्य देखने की इच्छाएं, इतनी इच्छाएं पल जाती हैं कि इस शोर में आपके द्वारा ईश्वर की याद बन ही नहीं पाती है। और बैठ भी जाओ किसी तरह से मजबूरी में गुरु आज्ञा पालन करने के लिए, तो संसार का चिंतन आपको छोड़ता ही नहीं है। तो इस हालत में आप चाहते हो कि मेरे अंदर प्रेम पैदा हो जाए और ईश्वर की प्रेम से मुझको याद आती रहे। खुद सोच लो, ये संभव है क्या? ये असंभव बात है। बिल्कुल संसार में इसी प्रकार चलकर कोई ये चाह रहा है कि मेरे मन में ईश्वर का प्रेम आ जाए, तो ये असंभव बात है, आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपका निश्चय बदलना ही चाहिए संसार के बारे में। संसार सुख रूप है, जितने अधिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी उतना ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरे बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा। ये आपका उल्टा निर्णय है और इस निर्णय को बदलने के लिए महाराज जी ने समता प्रकाश ग्रंथ प्रकट किया, समता विलास लिखी उन्होंने इसी निर्णय को बदलने के लिए, और आप उसको पढ़ना भी नहीं चाहते ध्यान से, केवल सुनकर काम चलाना चाहते हो। कैसे चल जाएगा बताओ? सुनोगे उस समय मन में विचार टिकेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, जो संसार की चेतन मन में चल रही थी उससे भी छुटकारा कुछ देर के लिए मिल जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आप, लेकिन फायदा क्या होगा फिर उसका? आप चिंतन कैसे करोगे? तो चिंतन करने के लिए शास्त्र सामने खुला होना जरूरी है, इसलिए बिना अध्ययन के काम नहीं बनता। और बात सत्पुरुष ने एक ही सिखानी है कि संसार में दिल लगाकर जीना जिंदगी की बर्बादी है। यही बात सिखानी है गुरु ने, और कुछ नहीं सिखाना। संसार में दिल लगाकर वक्त व्यतीत करना ये जिंदगी की बर्बादी है। समता विलास ये आपको सिखा देगी, पक्की बात है। यदि आपकी डिवोशन उस ग्रंथ के प्रति है और आप उसको इस बात के निर्णय पर सही रूप में पहुंचना चाहते हो, तो पढ़ते पढ़ते सोचते सोचते एक दिन देखेंगे कि आपका आ जाएगा, कि आपकी बुद्धि का भी निर्णय वही हो जाएगा जो निर्णय गुरु ने पेश किया। उस समय आप बात कर सकते हो कि क्या करूं कि मेरा ईश्वर से प्रेम हो जाए। उस समय आपकी यह स्थिति होगी कि आप ईश्वर से प्रेम करने लायक बन सकोगे। उस समय यदि किसी से पूछोगे कि क्या करूं ईश्वर से प्रेम हो, तब वो प्रश्न का उत्तर आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, बड़ी आसानी से समझ। अभी तो केवल उत्तर के रूप में शब्द सुन लोगे आप, सुनिए चाल आपकी वही रहनी है तो कैसे होगा फिर? दस बार भी प्रश्न पूछ लो, दस बार भी उत्तर सुन लो, उसका प्रेम नहीं होगा। तो बेसिक चीज है कि प्रेम उससे होता है जिसकी मैं आवश्यकता जीवन में महसूस करता हूं। आवश्यकता महसूस करने के लिए मैं किसी का लेक्चर नहीं सुनता हूं, वो आवश्यकता मुझे महसूस होती है, मेरे दिल में बेचैनी होती है। जिस चीज की चाह मेरे मन में है, जिस चीज की तड़प मेरे मन में है, वो मुझको प्राप्त होनी चाहिए। इसीलिए अब वो वस्तु कैसे मिले, उसका उपाय जब किसी से पूछते हो, सुनते हो, तो फिर उसको करने की कोशिश करते हो, दिल से करने की कोशिश करते हो। तो पहले तो हमारी ये जो प्रारंभिक स्थिति है, ये आनी चाहिए। संसार में जरा भी मनोरंजन हो हमारा, जरा भी मन अनुकूल वातावरण मिले, कैसे मस्त हो जाते हैं उसके अंदर, हमारे चेहरे खिल उठते हैं। उस समय की याद आती है कि इस समय तो मेरे मन से ईश्वर बिल्कुल निकल गया, संसार पूरी तरह बसा हुआ है, इस समय मैं संसार में पूरी तरह फंसा हुआ हूं, याद आती है उस समय? नहीं आती। यदि इस सत्विचार आपने गुरु के अनुसार किया होता तो जहां मौज मस्ती हो रही है उस वातावरण में भी मन के अंदर उस चीज की याद बनी रहती है आपके अंदर। राग रंग देख के आपके अंदर यह विचार उठता कि देखो ये लोग कैसे फंसे हुए हैं राग रंग में, इनको कोई होश नहीं है कि जिंदगी कहां जा रही है। उनको देख के, उस राग रंग को देख के आप मस्त नहीं होते, उसमें आपके अंदर विचार उठता ये कहां जा रहे हैं, इनको जिंदगी की कोई होश नहीं है, ये अपनी जिंदगी को पूरी तरह से भूले हुए हैं। तो विचार ये 24 घंटे की चीज है, हर वक्त मन में चलता है। ऐसा व्यक्ति भोगों में मस्त हो ही नहीं सकता, चाहे कितने स्वादिष्ट पदार्थ उसको मिले, चाहे बढ़िया से बढ़िया कितना घूमने को मिले उसको, चाहे कितनी भी शान शौकत मिल जाए उसको, लेकिन उसमें मस्ती उसको आ ही नहीं सकती। जिसके अंदर भी विचार चलेगा उसके अंदर उसको मस्ती नहीं आएगी। तो इसीलिए ऐसी जब बुद्धि हमारी होती है वो जागरूक बुद्धि है। बुद्धि सोने रही है, बुद्धि जागी हुई है। बुद्धि सोती कब है? मन में जो शौक आपके पल रहे हैं, जो स्वभाव आपका है, उसके अनुसार जब वातावरण मिलता है आप उसमें मस्त हो जाते हो, तो कहा जाता है कि बुद्धि इसकी सो रही है। मन जाग रहा है, बुद्धि सो रही है, इसको होश ही नहीं है मन के अनुकूल चलने में मैं किस गड्ढे में गिरने वाला हूं। तब ये जब बेसिक चीज आपके अंदर जब वैचारिक रूप में बनी रहती है, तब आप गुरु की बातों का महत्व भी समझते हो, उसको अमल करने की कोशिश भी करते हो। लेकिन इंद्रियों का तप लाजमी है, याद रखिए। कोई हमें से इस वहम में होना कि विचार से जीत जाऊंगा, ये संभव नहीं है। हम इतने इंद्रिय भोगों में, संसार के शौक में फंसे हुए हैं, इसमें ईश्वर प्रेम हो ही नहीं सकता। तो इंद्रियों का तप तो आपको करना ही पड़ेगा यदि ईश्वर प्रेम चाहिए तो। सत्संग आपकी इतनी ही सहायता करता है कि ईश्वर है ये आपको दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन सत्पुरुष का जीवन देखकर आपको यह विश्वास जरूर हो जाता है कि ईश्वर है जरूर, नहीं तो यह सत्पुरुष संतुष्ट कैसे होता, निर्भीक कैसे होता है, विचारवान कैसे होता है? किसी यूनिवर्सिटी में सत्पुरुष नहीं पढ़ा, लंबी चौड़ी किताबें उसने नहीं पढ़ी, कुछ सुख के साजो सामान उसके पास नहीं है, सुरक्षा के साधन भी उसने सारे छोड़ दिए हैं। महर्षि रमण गुफा में पड़े रहते थे, कोई सुरक्षा का साधन नहीं था। महाराज जी जंगल में पड़े रहते थे, कोई सुरक्षा का साधन नहीं था। खाने पीने के बारे में आप जानते ही हैं क्या खाते पीते थे, तो फिर भी लोगों के बीच में जब वो बैठे होते थे तो उनके अंदर की मस्ती का ये आलम था कि बाहर से वो उनकी जो वृत्ति थी वो अंतर्मुखी हो जाती थी और अंदर इतनी मस्ती होती थी कि आधा आधा घंटा लग जाता था कई बार। लोग चारों तरफ सर्किल में बैठे हुए हैं, उनकी वृत्ति बहिर्मुखी हो ही नहीं रही। और जब बहिर्मुखी वृत्ति होती थी उस समय प्रेमी खुद देखते थे, उनकी शक्ल देख के ऐसा लगता था जैसे किसी गहरे नशे से वो जागे हों, आंखों में भी उनकी लाली हुआ करती। कहते थे प्रेमियों कोई विचार करो, और किसी प्रेमी ने यदि 5-7 मिनट लगा दिए कोई विचार नहीं किया फिर अंदर वृत्ति पहुंच जाती थी, फिर 15-20 मिनट बाद फिर वृत्ति बहिर्मुखी होती थी, फिर वो प्रेमियों की तरफ देखते थे, फिर कहते थे प्रेमी कोई विचार करो। तो अंदर क्या चीज है, कोई चीज है जरूर। सारे शिष्य जो सामने आम संसारी होते थे, बोलो, गुरु को देखकर यह निश्चय हो जाता था कि अंदर एक है ऐसी चीज जरूर जिसमें मस्ती है, और इतनी मस्ती है कि देह संसार की मस्ती उसके आगे कुछ भी नहीं। तो गुरु को देखकर यह निश्चय होता है कि गुरु जो कह रहा है कि अंदर ईश्वर का आनंद है वो झूठ नहीं कह रहा है, वो सत्य कह रहा है, और दुनिया के सारे आनंद इसके आगे फीके हैं। बल्कि वो तो दूसरी बात कहता है, दुनिया के सारे आनंद विषरूप हैं, मनुष्य इसमें जलता है, भुनता है, परेशान होता है, लेकिन अंदर का आनंद ऐसा है जैसे जैसे उसकी ओर बढ़ता है ये वो आनंद इसका बढ़ता ही चला जाता है और कभी नष्ट नहीं होता। और उसके मुकाबले में ये पूरा संसार का त्याग करने को तैयार हो जाता है, इसके अंदर लेश मात्र भी ये वहम नहीं रहता कि संसार में सुख है। तो गुरु की स्थिति देखकर इस बात का निर्णय हमारे अंदर होता है, लेकिन ईश्वर की यदि आप प्रेम से याद करने की बात करते हैं तो प्रेम से याद केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इस मार्ग पर चलने के लिए पहले इंद्रिय संयम किया है, इंद्रियों का तप किया है, नहीं तो प्रेम उसके अंदर नहीं आ सकता, प्रेम नहीं आया। तो इसलिए गुरु ने इस प्रेम के लिए ही 5 नियम दिए हैं, 5 नियम पालन करने पड़ते हैं, 1-2 से काम नहीं बनता, 1-2 से काम नहीं, हमारा जीने का ढर्रा ही बदल जाता है, जीने का लक्ष्य ही बदल जाता है। तो जब व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति की इच्छा लेकर, और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तब कही जा सकती है कि उसके अंदर है, जब उसने इंद्रिय संयम में कुछ सफलता पाई है, ये तब वो कर रहा है, तभी ये बात उस पर लागू होती है। तो इसीलिए जब ऐसा व्यक्ति पूछता है कि मेरा ईश्वर में प्रेम कैसे पैदा हो, लगन कैसे पैदा हो, उसको फिर बताया जाता है भाई कि गुरु ने जो तुझको मंत्र दिया है, जिस मंत्र को जप करने की गुरु ने परमिशन दी है, वो मंत्र ही ईश्वर है। जिस प्रकार गुरु कहता है कि ईश्वर निराकार है, महाजी ने समता विलास में लिखा ईश्वर एक शक्ति है जो देह के रोम रोम में व्याप्त है, और वो तेरा जीवन है, तेरे शरीर का एक सेल भी उस शक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकता, वो तेरा जीवन है। उसी का नाम ईश्वर है। तो वो शक्ति जो है, वो शक्ति ही अवतार लेती है गुरु रूप में और मंत्र रूप में। तो वो अवतार ये कह रहा है आपसे कि त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। अपार मंगल का मतलब होता है अपार कल्याण, अपार कल्याण का मतलब होता है मोक्ष। उसी का नाम है सर्व सिद्धि, जिसके पश्चात कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये जो मंत्र है ये उस ईश्वर शक्ति का अवतार है या मंत्र रूप में वो शक्ति अवतरित हुई है, इसीलिए कि मैं अंतर्यामी ईश्वर का मंत्र रूप में संग कर सकूं। ईश्वर मेरे रोम रोम में व्याप्त है लेकिन मैं उसका संग तो नहीं कर सकता, मेरा जीवन उसके बिना संभव ही नहीं है। एक सेकंड भी ये देह जीवित रह ही नहीं सकती बिना उस शक्ति के, ऐसा अंतर्यामी ईश्वर, लेकिन मेरा उससे संबंध कोई भी नहीं, तो मैं कैसे उसकी याद करूंगा। तो इसीलिए ईश्वर इस मनुष्य की, इस जीव की, इस मजबूरी को समझता है वो, इसलिए उसने इस शक्ति रूप में, मंत्र रूप में अवतार लिया है। तो मेरे अंदर तो ये भाव आना चाहिए सबसे पहले तो, हे प्रभु तुम अंतर्यामी हो परंतु तुमने मेरे लिए अवतार लिया है, और तुम यदि इस भाव के साथ उस मंत्र का जाप करते हो तो आपके मन में यह भाव नहीं आएगा क्या कि अंतर्यामी प्रभु हैं, उन्होंने मेरे लिए मंत्र रूप में अवतार लिया है, अब मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं तो प्रभु मेरे खुश होंगे या नहीं होंगे? क्यों खुश होंगे? क्योंकि मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, अंतर्यामी प्रभु की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, ये होश भी तो मुझको रहेगा। तो सीधी सीधी सी बात है, इसी को गुरु आज्ञा बोलते हैं, इसी को प्रभु आज्ञा बोलते हैं, इसी को गुरु प्रायणता बोलते हैं, इसी को ईश्वर प्रायणता बोलते हैं। तो पांच नियम के रूप में यह गुरु प्रायणता ही है, पांच नियम के रूप में यह ईश्वर प्रायणता ही है, क्योंकि ये नियम मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए पालन कर रहा हूं, ईश्वर से मेरा प्रेम का संबंध बन जाए इसलिए इस प्रोग्राम पर मैं चल रहा हूं। तो यदि इस बात का आपको होश है तो कैसे प्रेम आपके अंदर नहीं होगा? होश तो रहना चाहिए ना। ये मंत्र नहीं है, ये प्रभु ने मेरे लिए अवतार लिया है, इस घोर कलयुग में अवतार लिया है, क्योंकि वाणी ये बात कह रही है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा ये बात, वाणी कह रही है, कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होए सयोग। अंतर्यामी प्रभु का दर्शन मुझे प्राप्त होगा, अंतर्यामी प्रभु का प्रेम मुझे प्राप्त होगा, उनके साथ मेरा संबंध बनेगा। संसार के संबंध टूट जाते हैं लेकिन ईश्वर का संबंध दिन और रात का संबंध है, वो संबंध तो इस शरीर की मौत के साथ भी नहीं टूटने वाला, क्योंकि मौत इस देह की आएगी तो ईश्वर भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। मेरा जो मैंने जो तप किया है उसका फल भी मेरे मन के अंदर सुरक्षित रहेगा। तो जो कुछ भी प्रयास, जो कुछ भी कोशिश मैंने ईश्वर मार्ग में चलने के लिए की है, ये सारी की सारी सुरक्षित मुझको एज इट इज मिलेगी, और संसार में जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया है कमाई कर करके, ये शून्य हो जाएगा, परफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो बुद्धिमान मनुष्य वही है जो ऐसी कमाई करता है जो सदैव उसके दिल में सुरक्षित रहती है, संसार में सुरक्षित नहीं रहती, उसके दिल में सुरक्षित रहती। तो ईश्वर कोई कहानी नहीं है, ईश्वर कोई बातों का पुलंदा नहीं है, गुरु जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है जो मुझे बहकाएगा। वो दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। दुखी जीव की पुकार सुनकर सतगुरु उसका जगत से उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। और जगत से उद्धार का क्या मतलब है? इस जीव का अपने ही मन से या अपने ही मन के बंधन से मुक्त होना, यह है जगत से उद्धार। क्योंकि जगत मन के अंदर बसा हुआ है, बाहर कोई जगत नहीं है। जैसे स्वप्न की रचना वास्तविकता है या मन का संकल्प है, जिस प्रकार जगत स्वप्न में जगत की रचना मन का संकल्प है, उसी प्रकार ये जागृत हालत भी स्वप्न जैसी ही है। लेकिन इसका निश्चय इतना पक्का बना हुआ है हमारे अंदर कि हमको ये सत्य नजर आता है। और जो ईश्वर सत्य है, जो स्थाई है, जो परमानेंट है, वो ईश्वर हमको झूठ नजर आता है। डाउट करते हैं, पता नहीं है भी या नहीं, सुनी सुनाई बातें हैं। तो इसीलिए जब तक आपका ये निश्चय पक्का नहीं होता कि ईश्वर है और मेरी देह के अंदर ही मौजूद है और मेरे रोम रोम में रमा हुआ है, इस बात का अनुभव जिन्होंने गुरु आज्ञा सही रूप में पालन किए है, सिमरन किया है, वो इस चीज को अपनी देह के अंदर अनुभव करते हैं। सही रूप में शास्त्र श्रद्धा तो उनके अंदर होती है, जो लिखा है शास्त्र में वो अपने अंदर देह के अंदर अनुभव कर रहे हैं, फिर अश्रद्धा का क्या मतलब होता है? तो इसीलिए जब तक आप गुरु की हर बात को गंभीरता से नहीं लोगे, समझे, संसार की नकल करना नहीं छोड़ोगे, तब तक प्रभु प्रेम की बात करने के ही आप अधिकारी नहीं हो। क्या करोगे? प्रेम तो आपको संसारी भोगों से ही होगा, उसी के लिए तड़पोगे। यदि मन चाहे चीज नहीं मिली तो देखो कैसे आंसू टपकेंगे, कैसा मन में क्रोध आएगा आपके अंदर, कैसा घर वालों से लड़ोगे आप। तो इसीलिए विचार करना सीखें, समता विलास को पढ़ना सीखें, समझे। और यदि सरल रूप में विचार पढ़ने हो आप, बहुत ही सरल रूप में, ये जानने के लिए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज ईश्वर है या कोई और चीज भी है, तो रामकृष्ण वचनामृत पढ़ लेना। तो रामकृष्ण की जो वार्तालाप है वो रामकृष्ण वचनामृत के रूप में 2 वॉल्यूम में उपलब्ध है। उसको इस दृष्टिकोण से पढ़ना कि रामकृष्ण ईश्वर के बारे में कह क्या रहे हैं और दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं। वो हर जगह यही कहते मिलेंगे कि ईश्वर के बिना संसार निरर्थक है, लेकिन वो ये सारी बातें बड़े ही सरल रूप में कर रहे हैं, जो आम बुद्धि भी समझ सकती है। महाराज जी ने उसको तार्किक ढंग से, एक सिस्टमेटिकली, जैसे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कोई प्रूव किया जाता है, एक सिस्टम से चला जाता है, तो उन्होंने, महाराज जी ने उसमें प्रूव किया है कि किस प्रकार संसार दुख रूप है। तो जो विचार कर सकते हैं वो समता विलास पढ़ें। समता विलास पढ़ के यदि आप इस निर्णय पर पहुंच गए कि संसार दुख रूप है, तो दुनिया की कोई चीज आपको भटका नहीं सकेगी। आप इतने पक्के हो जाओगे कि दुनिया की कोई चीज आपको भटका नहीं सकेगी, क्योंकि विचार की परिपक्वता बहुत गहरी चीज है। जिस मनुष्य का भी निश्चय परिपक्व हो जाता है, संसार उसको डिगा नहीं सकता, फिर कितने लालच दे दे वो नहीं डिगेगा। तो इसलिए सत्पुरुषों की बातें पढ़ें, जैसे जैसे आपके अंदर संसार का महत्व कम होगा और ईश्वर का महत्व बढ़ेगा, वैसे ही वैसे आप खुद देखेंगे कि ईश्वर का सिमरन करने में, यदि आपने गुरु आज्ञा के अनुसार सिमरन किया है, तो ईश्वर का सिमरन करने में आपके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रेम आने लगेगा, मन आपका लगने लगेगा। क्योंकि वही बात फंडामेंटल मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस चीज की आपका मन आवश्यकता महसूस करता है उसमें आपका मन लग ही जाता है। मन का लगना ही प्रेम है, आवश्यकता हम महसूस नहीं करते ईश्वर की, इसलिए ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट नहीं होता। तो इसीलिए इसके लिए विवेक जरूरी है। विवेक गुरु वचनों से मिलता है, शास्त्रों के स्वाध्याय से मिलता है, उनके जीवन से मिलता है। इसलिए इन चीजों के प्रति हम लापरवाही ना करें, स्वाध्याय करें और इंद्रिय संयम जरूर करें। सारी दुनिया फैशन कर रही हो, मैंने नकल नहीं करनी, मैंने मर्यादा में जीना सीखना है, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य ही दूसरा है। मैं कैसे उनकी नकल कर सकता हूं? मुझे अपनी जिंदगी की होश है, वो अपनी जिंदगी के प्रति बेहोश है, तो बेहोश लोगों की नकल कैसे कर सकता हूं? कैसे कह सकता हूं कि दुनिया की तो चाल आजकल ऐसी ही चल रही है, मैंने भी इस प्रकार जीना ही पड़ता है? ये बुद्धिमान लोग ये बात नहीं करते, नकलची ये लोग ये बात करते हैं, जो नकलची होते। तो जिंदगी यदि सुकारत लगानी है, जिंदगी यदि एनकैश करनी है, बर्बादी से इसको बचाना है, तो गुरु आज्ञा का पालन करना सीखें। एक दिन आपके जीवन में जरूर आएगा कि प्रभु से प्रेम होगा और उस प्रेम के मुकाबले में संसार के सारे भोग आपको फीके नजर आएंगे। उस दिन गुरु को धन्यवाद करोगे, गुरुदेव आपने कृपा की कि मुझको ईश्वर के मार्ग पर डाल दिया। ओम ब्रह्म सत्य।